लापे माधना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हे ना कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन कहाँ कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज कहाँ मोरा एक काले को था गेला गोरा नटरा पाषाण कुटीब माथा अनल पशिव पाषाण को गौरांग गुणे थागले पाव गौरांग गुणेरा से सब संगी रसंगे जे कैला बिला संग संग से संग न पाइया कंदे नरोत्तम दा से संग न पाइया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य शील प्रभुपाद महाराज की श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि की निताय गौर हरि प्रेमानंदे इसमें सड़क में अष्टक नहीं है क्या संजीव नहीं तो आज वो पावन तिथि है जिसमें हमारे ब्रज के एक विशिष्ट रसिकाचार्य और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक प्रधान आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव तिथि है तो उसमें उनके बारे में थोड़ा आलोचना करेंगे। ऐसे आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में इसे कहा गया है कि श्री भगवान की कथा गुण कीर्तन के श्रवण के अतिरिक्त इस संसार बंधन से मुक्ति पाने का और कोई उपाय नहीं है और भगवत भक्तों का कथा को भी श्रीमद् भागवत में इस कथा करके माना गया है पर स्वयं भगवान ने अपने भक्तों को उनसे भी बढ़कर और आप भक्तों की पूजा को भी अपने पूजा से बढ़कर ही स्वीकार किया है। केवल इतना ही नहीं भगवान स्वयं ये माना है और बोला भी है कि ये स्वयं अजीत होते हुए भी भक्तों के द्वारा हमेशा हारे हुए हैं स्वयं परम स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के द्वारा हमेशा बस में हो जाते हैं पराधीन है। तो अभी आप ही बताइए तो हम जैसे बद्ध जीव तो ये हारे हुए भगवान की शरण में शरण को छोड़कर अगर जीते हुए उनके भक्तों की शरण में जाएं तो ये भव बंधन से मुक्ति तो होगी ही और उसके साथ साथ भागवत प्राप्ति भी अति सुगम हो जाएगी क्योंकि भगवान के भक्तों की चरित गाथा श्रवण कीर्तन करने से जैसे भगवत प्राप्ति की मार्ग प्रशस्त होता है स्वयं भगवान की गुण कीर्तन करने से प्राय ऐसा नहीं होता है इतनी सरल नहीं और सर्वशास्त्र में स्वयं भगवान पुकार के कहे हैं कि उनको प्राप्ति का भगवत प्राप्ति का उपाय केवल भक्त्याम ग्राह्य हम केवल भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है और सो भक्ति केवल भक्तों के संग से ही प्राप्त होता है, भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे प्राकृत भक्त मिलते कहां ताकि उनका कृपा मिले, उनके संग मिले, बड़े कठिन व्यापार। तो भगवत उत्तम कोटि के भगवत भक्त की चरित गान श्रवण से जो भक्तों के संग सुलभ होता है, अन्य किसी उपाय से भक्त संग नहीं हो सकता। तो हमारे सामने केवल यही एक ही आशा भरोसा है, ऐसे उत्तम कोटि के भक्तों के संग केवल उनका चरित गान के श्रवण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ना अन्य पंथा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आज से लगभग 500 साल पूर्व दक्षिणात्य देश में एक द्राविड़ श्री संप्रदाय ब्राह्मण परिवार में लगभग 1500 ख्रीष्टाब्द में प्राकट हुए थे। उनके परिवार में तीन श्रेष्ठ भट्ट परिवार थे, जिसके तिरुमल भट्ट, वेंकट भट्ट, परिमल भट्ट। वो तीन संपूर्ण दक्षिण देश में प्रसिद्ध सुपंडित थे श्री संप्रदाय के, और इतना ही नहीं प्रसिद्ध श्री रंगनाथ जी के प्रधान अर्चक थे। ये भट्ट परिवार है तीनों, उनमें से जो मध्यम भट्ट है वेंकट भट्ट, उन्हीं के पत्नी सदम्बा से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रकट हुआ है। शुरू से ही उनका रूप चंपक वर्ण जैसा था, आकर्ण लोचन था, अति सुंदर लावण्य वेश और ललित सुललित चरण, ऐसे अति सुंदर वर्णन है उनका स्वरूप का। और भगवत भक्ति में उनका तो नैसर्गिक मति था, जन्मजात भगवत अनुराग था। ये पता तो तभी चला जब उनके वंश के आराध्य देव श्री लक्ष्मी नारायण उनके सामने जब ये बालक कभी जाते थे तो मुग्ध चित्र में आंख छलछलाते हुए उनको दर्शन करते थे, भाव विभोर उठते थे। उसको देख करके भट्ट परिवार कृतार्थ होते थे कि ये बालक निश्चित रूप से सिद्ध भक्त है। तो उनके धी शक्ति भी प्रबल थी, तो उनके पढ़ाई लिखाई का दायित्व स्वयं पिता वेंकट भट्ट ने आपने अनुज परिमल भट्ट जो प्रबुद्ध भट्ट बने थे, आगे चलकर के श्री संप्रदाय में एक प्रसिद्ध सन्यासी थे, उनके देखरेख में छोड़ दिए। बोले भाई आप बड़े पंडित हो, बड़े न्यायिक वेदांति हो, बेटा को तू पढ़ा। और तीनों परिवार में एक ही बालक था तीनों लोगों का, तो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े लगन से काका जी ने, चाचा जी ने भतीजे को शास्त्र पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। ब्राह्मण के परिवार है, श्री संप्रदाय के द्राविड़ ब्राह्मण बड़े शालीन होते हैं, बड़े कुलीन होते हैं। 9 साल में ही उपनयन संस्कार हो गया, द्विज बने। उसके बाद में उनका ऐसे एक सौभाग्य हुआ, पिता वेंकट भट्ट के साथ में जगन्नाथपुरी जाने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ जी के शिव विग्रह को दर्शन किए। दर्शन करते समय उनके जो भाव मुद्रा, उसको उनके पिता श्री वेंकट भट्ट देख करके अद्भुत चकित आश्चर्य हो गए। उनमें आंख से आंसू की धारा चल रहा था, और उनका जो सात्विक विकार, उनकी जो दशा देखने बनी थी, उसको देख करके पिता वेंकट भट्ट ने ही अनुमान लगा लिए कि उनके भविष्य निश्चित रूप से पता चल गया कि कैसे होगा। तो जगन्नाथ जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने गए वापस अपने घर में। लेकिन वास्तविक उनके भाग्य का पूर्ण सूर्य का प्रकट तो हुआ 2 साल के बाद में। सौभाग्य सूर्य का उदय जब हुआ, जब भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु नवदीप लीला के उपरांत 26 साल में फाल्गुन मास में संन्यास ग्रहण करके नीलाचल चल गए। नीलाचल में लगभग फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास थोड़े समय में पहुंचे। महीना एक पुरी में रह करके प्रकांड न्याय के वेदांति पंडित सार्वभौम विशारद वाचस्पति को, वासुदेव सार्वभौम को पराजित करके भक्त बना दिए, उद्धार किए उनका। उद्धार करके महीने एक लगा लीला में खेल में उनको उद्धार किए और बैसाख में ही बोले मैं दक्षिण में जाना हूं, दक्षिण यात्रा में निकले। और दक्षिण यात्रा करते करते सबको उद्धार करते हुए ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ के शुरुआत में रंग क्षेत्र पहुंचे। पुण्य सलीला पवित्र कावेरी नदी में स्नान किए। भागवत में वर्णन है कावेरी नदी का, जो उस नदी के स्नान करते हैं उनका जल को पीते हैं उनका स्वाभाविक वासुदेव भक्ति प्रकट हो जाता है, नारायण भक्ति हो जाता है। तो उनके तीर निकटवर्ती निवास और भट्ट परिवार का, और वो तो रंग के पुजारी थे, अर्चक थे। तो पवित्र कावेरी नदी में स्नान करके भगवान स्वयं रंगनाथ जी के दर्शन के लिए चले। श्री रंगनाथ देव के शिव विग्रह के दर्शन करके भाव विभोर होकर के नृत्य कीर्तन करने लगे। ये तो उनका स्वाभाविक मति रति था ही। तो उनके ये कीर्तन रूप, जो उनका रूप माधुरी, जो उनका आजानुलंबित भुज जुगल, जो इतने सुंदर रूप आकर्ण लोचन, वो तप्त चंपक वर्ण के सुवर्ण वर्ण के शरीर, और उनमें अष्ट सात्विक विकार से विभूषित जो रूप माधुरी को, जो स्थावर जंगम को भी विकंपित करने वाला था, और उनपे जो सुर सुमधुर कीर्तन गान उनको सुन करके दर्शक आकर्षित होकर के भीड़ उमड़ने लगा। श्री रंगनाथ के विशाल प्रांगण खचाखच दर्शक समूह से भीड़ गया, इतने भीड़ जम गया, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गया, पूरे प्रांगण खचाखच भर गया। मंदिर के द्वार देश में कोने में पुजारी श्री वेंकट भट्ट, वो भी इस रूप माधुरी इस भाव माधुरी को दर्शन करके कृतकृत्य हो करके सौ सौ बार उनके चरण में नमन उन्छावर होते थे। कई समय तक किस लीला चला, अंत में प्रशमित हुए, बाह्य दशा में प्रभु आए तो भीड़ को फाड़ते हुए वेंकट भक्त आकर के चरण में नमन किए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि प्रभु आज कृपा करके हमारे घर में भिक्षा के भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो महाप्रभु तो स्वयं अंतर्जामी है ही, उनको इतने तलब क्यों पड़ा था दक्षिण भारत जाने का, और गए तो गए एक आध महीना में यहां पहुंच गए। उनका योजना तो हुई जाने, राजी हो गए। भक्त को छोड़कर भगवान कहां रहे, राजी हो गए, ठीक है आपके घर में प्रसाद लेंगे आज। तो उनको लेकर के गए अपने घर में, वही प्रांगण में ही था उनका निवास। तो भट्ट परिवार के सभी पुरुष स्त्री बालक सब मिल करके महाप्रभु को विशेष स्वागत संवर्धना के, तो सन्यासी थे और इतने अपूर्व रूप सन्यासी था। तो प्रणाम आदि किए, उनको घर में स्वागत किए। तभी श्री गोपाल भट्ट के वयस केवल 11 साल के था। तो उन्होंने आकर के जब दर्शन किए इस नवीन सन्यासी को, तो आंख से आंख लग गया, चकित हो गए, आपको संभाल ना सके, तुरंत प्रणाम करने आए। प्रणाम क्या करें, महाप्रभु उनको अपने गोद में ले लिए, बहुत लाड़ दुलार प्यार किए, आपने प्रेम अश्रु से उनको अभिषिक्त किए। लेकिन साक्षात ईश्वर के दिव्य स्पर्श, उनके ये शक्ति संचार को सहन करने का शक्ति बालक का थोड़ी था, वो तो तुरंत ही असंभाल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। हाई वोल्टेज कैसे संभाल सके, मूर्छित हो गया। महाप्रभु को अपने सर्वश्रेष्ठ आशीष को करना पड़ा, अपने चरण जुगड़ को अपने सर में धरना पड़ा, तब आश्वस्त हुए हो। तो वेंकट भक्त परिमल तिरुमल सब दौड़ कर गए निकट में पुण्य कावेरी जल से, गागर भर कलसी भर भर करके पानी लाए, वो विधि है, सन्यासी घर में आए उनको चरण धोवन किए, चरण धो करके चरणामृत सब पिए, सबको पिलाए। जैसे चरणामृत को बालक गोपाल ने पिया, तो उनको कौन संभाले। एक बार भाव में अविष्ट होकर के उद्भाव होकर के नृत्य कीर्तन करने लगे, किसी का बस में नहीं हुआ कि उसको शांत कर सके। उदंड नृत्य, सब घर वाले तंग हो गए, कैसे क्या पागल हो गया, क्या करे क्या करे, उन्मत्त पागल। महाप्रभु उसको देख करके अंतर में बहुत प्रसन्न हुए, ठीक लेकिन बाकी सबको कुछ आशा ही नहीं, क्या करें, कैसे उनको समझ संयमित करें। तो अंत में यही तो उपाय है, जैसे कैसे करते करते महाप्रभु फिर अपने चरण स्पर्श कराए तो प्रसन्नित हुए। फिर महाप्रभु के चरण में मस्तक को लाल करके रो रो करके उनके चरण को अपने आंसू से उनको भी अभिषेक कराए। विशेष कृपा किए प्रभु उनके ऊपर। तो इनके स्वाभाविक मति अपने पुत्र का इस सन्यासी के प्रति देख करके वेंकट भक्त अपने को कृतार्थ माने और उनके सेवा में उनको ही नियुक्त किए। साक्षात भगवान श्रीमन महाप्रभु के केवल संग नहीं, उनके सेवा की सौभाग्य एक दिन नहीं, चार चार महीना तक जिनको प्राप्त हुआ, उनका सौभाग्य को कैसे वर्णन करें। अरे पल भर के कोई भक्तों के संग से कोई व्यक्ति को क्यों से क्या बन जाता है। अरे साक्षात संत शिरोमणि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग और सेवा के गोपाल भट्ट के जो होना था सो हुआ। भक्ति के संस्कार तो जन्म से तो था ही, और प्रबल से प्रबलतर प्रबलतम दृढ़तर हो गया। तो भट्ट परिवार ने महाप्रभु को प्रार्थना की कि प्रभु चतुर्मास शुरू हो चुका है, आप कृपा करके, आप तो सन्यासी है, अब कहां जाएंगे, व्रत यहीं कीजिए, यहीं रहिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको सेवा के अवकाश दीजिए। तो महाप्रभु का अंतर तो ही बोल रहे थे, तो राजी हो गए। तो नित्य प्रति महाप्रभु का दिनचर्या रहा, कावेरी स्नान, रंगनाथ के दर्शन, स्वाभाविक नृत्य कीर्तन, और आपस में आकर के घर में बाकी समय कृष्ण की चर्चा। और कृष्ण की चर्चा स्वयं कृष्ण भक्त वेश में आकर के अगर करे तो उसका रसायन वो कैसा हो, जो सुने जो खाए वही जाने, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं उसको बोल सके। तो प्रतिदिन दैनिक इसी प्रकार चलने लगा। और बालक तो समझो महाप्रभु के कृपा से पालित पोषित चिड़िया के पक्षी के तरह निरंतर उनके छाया की तरह काया से छाया के समान उनके सामने साथ में रहते रहा। नहाने जाए तो नहाने जाए, आने जाए तो आने जाए, मंदिर जाए तो मंदिर जाए, खाने बैठे तो परस दे, कुछ करे बस वही जैसे काया से छाया अलग ना होए यही से ही रहने लगे उनके सेवा में। क्या सौभाग्य है उनका, महाप्रभु ने उनको दिव्य स्पर्श शक्ति सेवा के अवसर दे करके उनको पूरे तालीम कर दिए, उनके भविष्य पर्यंत सब कुछ ठिकाना लगा दिए उनके। एक बार बेटा गोपाल ने महाप्रभु के पास बैठ करके उनको रूप को देखते थे, देख करके उनको लगता कि इतने सुंदर कमनीय रूप, इतने सुंदर आकर्षक रूप लावण्य, ये निष्ठुर मुंडित मस्तक सन्यासी रूप में क्यों मुझे दर्शन हुआ, उनका पहले के रूप कैसा हुआ होगा। तो महाप्रभु के जो लीला कथा के श्रवण से उनको नवदीप लीला का भी पता चला, कैसे कीर्तन का करते थे, अद्वैत नित्यानंद श्रीवास आदियों का जो लीला नवदीप लीला का जब श्रवण किए तो उनका मन विकल हो गया। बोले हे निष्ठुर दैव, मुझे ये दक्षिण में क्यों जन्म दिया, मुझे क्यों नवदीप में जन्म नहीं दिया, मुझे इस सुंदर नवदीप नागर जो वेश है नर्तक वेश से दर्शन से क्यों वंचित किया, ऐसे सोच करके विकल होकर के रोने लगे। अंतर्जामी भावग्राही महाप्रभु तो भक्त वांछा पूर्ण करते ही हैं, समझ गए उनको मेरा नवदीप लीला के दर्शन करने का बड़ा लालसा है, आपने ईश्वरी माया से रोते रोते वहीं सो गए, निद्रा अविष्ट हो गए। गोपाल जब निद्रा अविष्ट होता है तो स्वप्न अविष्ट हो गए, तो स्वप्न में वही अति सुंदर नवदीप नागर वर वेश के दर्शन हुआ, कीर्तन में श्रीवास अद्वैत नित्यानंद प्रभु गदाधर आदि के मेल में जो कीर्तन, उस कीर्तन में खुद शामिल हैं, वो देखते हैं उनको अद्वैत प्रभु कभी नित्यानंद प्रभु गोद में लेते हैं, उनको दुलारते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, और वो तो नैसर्गिक आनंद में दिव्य आनंद में कीर्तन के साथ जुड़े हुए हैं, उसको आनंद में कभी नाचते कभी रोते, और कुछ उनके बोलते बोलते जब बोलने के लिए चले तो आंख खुल गया, चौंक गए, देखे बोले क्या हुआ, आंख खोल कर देखे तो सामने अरे एक तो नित्य सुंदर श्यामल गोपाल विग्रह है, हैं ये क्या देख रहा हूं। तो तुरंत दौड़कर गए जाके प्रणाम किए, प्रणाम करके उठ के जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करके उठ के देखते हैं कि पुनः वही पीत वसनधारी मुंडित मुस्तक सन्यासी वेश। तो उनको स्वप्न से नवदीप लीला का दर्शन कराए, तो अति अद्भुत आश्चर्य हुए। तो महाप्रभु ने उनके मस्तक में हाथ फिराकर बोले गोपाल चिंता ना करो, कोई चिंता की बात नहीं, आप निश्चित रूप से आपके जीवन सार्थक हो चुका है और आप बहुत जल्दी वृंदावन जा करके भक्त रत्न रूप सनातन के संग लाभ करेंगे और आपके शिष्यों से दुनिया कृष्ण भक्ति से भर जाएगा, आश्वासन वाणी दिए। इस प्रकार प्रतिदिन उनके अंग सेवा के सुअवसर मिलता था, उनके शीत प्रसाद के आस्वादन करने का भाग्य प्राप्त होता था, उनको परसने का, उनको सेवा करने का, उनके जो जो सेवा उनका था सब तो केवल वही भागीदार थे, और मानो उनके परिवार ने उन बेटों उनको ही समर्पण कर दिए। काल तो किसी को अपेक्षा नहीं करता है, अति निष्ठुर है। दिन बीतने लगा, महीना बीतने लगा। कभी कभी भट्ट परिवार सोच रहे थे कि चतुर्मास पूरा हो जाएगा, ठाकुर जी हमारे घर से चले जाएंगे। इस बात जब मन में आता तो उनका अंतर वेदना का कोई छोर नहीं होता, दुख से फट जाता हृदय उनका। लेकिन क्या करें, समय आने लगा। वो समय ज्यादा दिन नहीं रहा, समय आ ही गया, चतुर्मास पूरा होने लगा। इस अवसर के एक और बात है, प्रतिदिन तो हास परिहास में कृष्ण कथा के प्रसंग छेड़ते थे, और जो श्री संप्रदाय के भक्त उनका उपास्य होते हैं लक्ष्मी नारायण, और विशेष करके जो भट्ट परिवार हैं वो तो रंगनाथ जी के अर्चक थे और उनके उपास्य देव स्वयं लक्ष्मी नारायण थे। तो उनका ये मन में बड़ा विश्वास और सिद्धांत था कि नारायण ही स्वयं भगवान है, क्योंकि बाकी जितने राम कृष्ण और वराह और वामन वो सबका तो जन्म हुआ है, नारायण का कभी जन्म नहीं, वो अज है, वही अजन्मा पुरुष है, वही वास्तविक भगवान है, स्वयं भगवान तो नारायण है। ये सब उनके परिकर होंगे, अंशकड़ा होंगे, ये उनके विश्वास था। महाप्रभु क्यों इस छोटा सा संशय को रखेंगे, उसको भी ठीक करना था उनको भी। तो एक दिन कथा परिहास में बोलने लगे, अच्छा भट्ट महाशय, आपके जो उपास्य देव हैं नारायण और लक्ष्मी ठाकुरानी है ना है, अच्छा देखिए जो लक्ष्मी जी हैं वो तो नारायण के लक्ष्य विलासिनी है, सती साध्वी शिरोमणि है, हाँ है तो है, लेकिन मैंने सुना है कि वृंदावन में जब कृष्ण लीला हो रहा था तो उनके संग पाने के लिए वो तपस्या करते थे जाके श्रीवन में। भाई आपके ठाकुर तो साक्षात वैकुंठपति हैं और आपके लक्ष्मी जी तो साक्षात सती साध्वी शिरोमणि वैकुंठ विलासिनी है, और हमारे ठाकुर तो भाई ग्वाला है, गोप है, गाय चराने वाले है ना, नहीं नंद ग्वाले के लड़का, भाई उनके संग पाने के लिए इतनी बड़ी घरणी ठाकुरानी क्यों जाकर के यहां जंगल में तपस्या कर रहे थे, यहां भी सती हैं भाई, उनको छोड़कर अपने पति छोड़कर भाई जंगल में ये ग्वाला के संग में क्यों जाना चाह रहे थे। तो वेंकट भट्ट चोंगे, बोले स्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं, ये ऐसे थोड़ी होते, अरे नारायण कृष्ण मंत्र थोड़ी है, ये नारायण का मूर्ति तो है, कृष्ण उनके अंश तो है, थोड़ा कौतुकी है, लीला में थोड़ा आवेश फर्क है, इसलिए अगर नारायण को छोड़कर कृष्ण के संग के लिए आए तो उसमें पतिव्रता का कोई हानि नहीं होता, एक ही तत्व तो एक ही है ना। तो महाप्रभु बोले हाँ सो तो ठीक है, तत्व तो एक ही है, नारायण कृष्ण अंतर तो नहीं एक ही है, लेकिन आप क्यों बोलते हैं, दोष देते हैं हमारे उपास्य देवी को लक्ष्मी जी की, उनको छोड़ करके उनको पाने के लिए तपस्या के, इसमें कोई पतिव्रता हानि थोड़ी होता, एक तो है पति उनके, चाहे कृष्ण हो चाहे नारायण हो ना, वो तो बात सही है, लेकिन मेरा कहने का ये है कि तपस्या तो किए जो किए, लेकिन तपस्या करके मिला क्या संग उनको, भाई ये ग्वाला का संग तपस्या करने पर भी नहीं मिला। और शास्त्र में कहा गया कि श्रुतिगण तपस्या करके उनको रास में भाग मिला, गोपी बन गए, उनको मिल गए ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन श्री जी को तप करते करते नहीं मिले। सो उसका कारण क्या है बताइए। भट्ट जी के दिमाग फेर गया, बोले प्रभु मेरा बुद्धि ठिकाने नहीं लग, मैं नहीं बोल सकता उसको, भगवान की लीला कोटि गभीर समुद्र जैसा अति अपार गंभीर है, मेरा खिद्र बुद्धि ये नहीं बता पाएगा, ये इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता, बता नहीं उनके वो जाने क्यों भाई ना, भाई बताओ क्यों ना, मैं तो नहीं बता सकता, आप ही साक्षात कृष्ण आप ही बताइए, मुझे नहीं पता है उसका कारण क्या है। तो महाप्रभु ने इसे हास परिहास में सिद्धांत शिक्षा देते थे उनको, बताया देखो कृष्ण तो ग्वाले रहे ब्रजेंद्र नंदन, तो उनको पाने के लिए और बाकी किसी को तो उनके वो शुद्ध ग्वाला है तो ग्वालिनी उनके साथ में रहेंगे, गोपी उनके साथ में रहेंगे, तो बिना गोपी बने उनका संग कोई नहीं पा सकता। लक्ष्मी जी आपने वैकुंठ महारानी बनकर के उनके संग पाने के लिए जाए, तपस्या करे कहां को पाए। श्रुतिगण तपस्या किए, गोपी शरीर धारण करके उनके संग प्राप्त किए, लेकिन वो नहीं पा। आपने जब तक ब्रजेंद्र नंदन को कोई पाना चाहता है तो ब्रज अनुगत नहीं होने से, ब्रज भाव से सब छोड़ करके अगर उनके तरह नहीं बनने से, राग मार्ग को नहीं अपनाने से, नहीं अपनाने से ब्रजेंद्र नंदन को पाना असंभव है। ये सिद्धांत है। जबकि वही नंदनंदन सभी को आकर्षित कर से अपनी रूप माधुरी लीला माधुरी से, केवल गोपी को नहीं, यहां तक कि स्वयं आपके लक्ष्मी ठाकुरानी भी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आपके उपास्य देव नारायण कभी गोपी की ग्वालिन को आकर्षित कर पाए? अरे आकर्षित क्या करें, एक बार तो ब्रज लीला में ऐसा हुआ कि भगवान की रास लीला में भगवान अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तो राधा रानी के समझ सब गोपी विवल होकर ढूंढने लगी, कहां गए कहां गए कहां गए, हाँ? सारे बन बन इधर उधर भटकने लगे, ढूंढने लगे। तो भगवान ने कौतुक करके अपने को नारायण वेश चतुर्भुज होकर के एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तो गोपी लोग को अन्वेषण करते करते गए और देखे नारायण खड़े हैं, शंख चक्र गदा पाणि जाके प्रणाम किए दंडवत के, हे प्रभु नारायण जुहार आपके चरण में, क्या हमारे कान्हा को देखा? वही तो कान्हा है, लेकिन उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ। जिसको ढूंढ रहे थे वो वही पुरुष है, लेकिन अभी दो डुप्लीकेट हाथ लगाए तो उनको प्रति कोई आकर्षण नहीं, मुंह मोड़कर प्रणाम करके चले गए। पूछ करके नारायण उनके मन को आकर्षित नहीं कर पाए, ना वो उनके प्रति ना वो उनके प्रति। और जब श्री राधा ठाकुरानी आई ढूंढते ढूंढते उनकी नजर पड़ा वही नारायण मूर्ति के ऊपर, अब नारायण के हाल खराब, अपने रूप को मेंटेन नहीं कर पाए, दो हाथ निकल गया, द्विभुज होना पड़ा, मुरली धारण करना पड़ा। तो राधा ठाकुर ने खड़े, अरे आप सब इतने ढूंढ रहे हो तो वही है, ललिते विशाखे, अरे श्याम तो नहीं है ना, कहां, हम तो अभी अभी ढूंढ कर गए ना, आंख खराब हो गया क्या, यही तो है। अरे वो तो नारायण खड़े थे चार भुजा वाले, नहीं कहां चार भुजा वाले, आके देखो तो वही है। तो उससे ये पता चलता है कि नारायण चाहे कितने भी करतुत कर ले, साधारण गोपी को भी आकर्षित नहीं कर सके, लेकिन नंदनंदन ग्वाले बनकर के कोई पढ़े लिखे नहीं, गोबर उठा करके बाछुर चराते हुए वैकुंठ विलासिनी नारायण के पत्नी साक्षात लक्ष्मी को खींच कर जंगल में तप व्रत में लगा दी और फिर भी नहीं पाए। उसको सुन करके भट्ट बोले वो क्या कहना चाहते हैं अपने क्या कहना चाहते हैं, हम जन्म जन्म से लक्ष्मी नारायण में मथा बेचे हैं, वो ये हमारे उपास्य है, आप क्या कहना चाहते हैं? ना जो शास्त्र की बात मैं सोई कहता हूं, ना तो वही तो बात है। तो पूरे भट्ट परिवार को लक्ष्मी नारायण से मन हटा करके राधा कृष्ण के जुगड़ उपासना में लगा दिए, एक ही बात में घंटा भर में चेंज, कोई उपाय नहीं, परिवर्तन होने का कोई उपाय नहीं, बनना था। अरे बड़े बड़े वेदांती नायक जो पट गए वो क्या, वो तो रसिक थे ही, भक्त थे, उनको कैसे नहीं बदलेंगे। तो ऐसे ऐसे अति अपार अमृत भगवत कथा विचार में जिसको आप्यायित करते थे, जिसका दिन रात एक एक पल एक एक घड़ी जो अवर्णनीय चिन्मय आनंद में भरा बीतता था, वो समय अभी अंत हो जाएगा, ये चार मास बीत जाएगा, उसको कोई सोच सकता है क्या? लेकिन करे क्या, विधि विधान बड़ा निष्ठुर है। जब चतुर्मास पूर्ण हुआ तो महाप्रभु ने भट्ट परिवार को प्रणाम करके अंतिम विदा लेने के लिए प्रार्थना किए। वेंकट भट्ट से कुछ कहा ना गया, शब्द उच्चारण नहीं हो पाया, कंठ रुद्ध होते रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान कोई भक्तों के कष्ट सहन नहीं होता है, वो भी अंतर से दुखी हुए, कुछ क्षण और रुके, लेकिन जाना तो था ही। उस समय में गोपाल जी के जो दशा, उसको वर्णन करने के किसी के सामर्थ्य नहीं है, जो देखे सो जाने, इसलिए उसको वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं। महाप्रभु के विदायकालीन अवस्था में बालक गोपाल की जो दुर्दशा हुई, जो दशा हुई, उसको किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो केवल आपको चिंतन अनुमान तक कहां तक पहुंचे आप पहुंच लीजिए कि क्या हुआ होगा। लेकिन महाप्रभु गए, उनको बहुत आशीर्वाद आलिंगन आशीर्वाद करते हुए वो गए, यही सांत्वना वाणी देकर गए, वेंकट भट्ट को देखो तुम्हारा पुत्र गोपाल बड़े सौभाग्यवान है, मेरे उनके ऊपर बड़ा लगाव है, बड़ा कृपा है, बहुत अच्छा बालक है। मैं आपको बोलता हूं वेंकट, उनको खूब अच्छा पढ़ाना लिखाना, अच्छा लड़का है, लेकिन एक बात मेरा करना ना, क्या? कभी शादी नहीं कराना उसको, विवाह नहीं देना उसका, और आपका सेवा करते रहेगा, बाद में वृंदावन जाएगा। ये आदेश जाते समय देकर चले गए। एक ही लड़के थे पूरे परिवार, तीनों भाई में, लो बात है ना, ने? इतने गुणवान रूपवान पुत्र पूरे परिवार में एक चंद्रमा जैसे, और क्या आदेश हो गया, शादी नहीं कराना, वो जाएगा तो घर छोड़ करके, वो तो अभी चला जाता, लेकिन मैं वो भी गोपाल को बोले थे कि नहीं जाना, माता पिता की सेवा करते रहना, उनके अंत में तो वृंदावन चला जाना। पुत्र को भी बोले थे और उनके घर में बोलकर चले गए, और भगवत वाणी रहा वैसे ही। महाप्रभु दक्षिणात्य भ्रमण में उस रंग खत्र छोड़ के चले गए, तो समय भी बहुत देर से बीत रहा है। तो उसके बाद में गोपाल को तो उनके जैसे प्राण शरीर से निकल के जा चुका है, लेकिन प्राणहीन शरीर केवल आज्ञा पालन मात्र के लिए घर में पड़ा रहता है, सेवा के लिए केवल वही बाट चाह रहा है, कभी यह सुवर्ण सुजोग आएगा कि मैं मेरे प्राणनाथ के आदेश पालन कर पाऊंगा। धीरे 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 20 साल बीत गया। 20 साल के बाद में भट्ट दंपति का भगवत धाम गमन हो गया। छोटे भाई तो श्री समुदा सन्यासी थे ही, वो भगवान के संग से ऐसे अनुप्राणित होकर, ये तो वृंदावन पहले से जा चुके थे। वो प्रबोधानंद सरस्वती उनका नाम था, वो तो पहले से ब्रज प्राप्ति कर चुके थे, ब्रज में आ चुके थे, वो तो बड़े पंडित पहले से थे ही। तो जैसे ही माता पिता के देहांत हुआ, जल्दी से जल्दी उनका संस्कार करके और निकल पड़े घर से। कोई गाड़ी घोड़ा ट्रेन प्लेन कुछ था नहीं तभी जमाने में, चलते 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 कहां खाए कहां रहे वो जाने, लेकिन ये जो जो चाह है इसी प्रकार भाव में, कोई हो तो ही जाने, किसी समय बीते किसी आके ब्रज पहुंचे। मन में तो बिल्कुल इच्छा नहीं था वृंदावन आने के लिए, विकल हो रहे थे नीलाचल जा करके प्राणनाथ को दर्शन करें, लेकिन करे क्या, आदेश बड़े बलवान है, उनको ही आदेश दिए थे प्रभु जी ने, तो वृंदावन जाना सीधा यहां से, और कोई नहीं जाने का। वृंदावन आए, वृंदावन पहुंचे, पूछताछ करके रूप सनातन से भेंट हुआ। रूप सनातन तो महाप्रभु के मुख से भूरी भूरी प्रशंसा सुने थे गोपाल का, आज उनका दर्शन हुआ, बहुत आनंद मग्न होकर के उनको स्वागत किए, आलिंगन किए रखे, और तुरंत अब तब देखिए कोई टेलीग्राम आईडी टेलीफोन मैंने कुछ व्यवस्था तो था नहीं आजकल जमाने की तरह, लेकिन वृंदावन कहां पूरी कहां 1500 किलोमीटर दूरी, इतने सुख हुए इतने आनंद हुआ रूप सनातन जी को, तो उन्होंने तुरंत एक व्यक्ति को विशेष रूप से चिट्ठी लेकर के भेजे, बोले जाओ स्पेशल पूरी चल करके भले महीना डेढ़ लग जाए, जाकर के महाप्रभु को खबर दो कि गोपाल वृंदावन आ चुका है। स्पेशल विशेष पत्र लेकर के भेजे गोपाल के आगमन का, शुभागमन शुभ आगमन का संवाद। तो साधु विशेष दूत जब जाकर के निराचर पहुंचे, भक्तों की गोष्ठी में महाप्रभु बैठे थे, जब उनको पत्र मिला रूप सनातन से तो उनको पढ़े अनुराग से, और जब उनको पता चला कि गोपाल वृंदावन आ चुका है, सतमुख होकर के गोपाल के गुण वर्णन करने लगे सभी के सामने, ऐसा ऐसा है ऐसा है ऐसा लड़का, तुरंत और रिप्लाई लिखे, तुरंत उन्होंने पत्र लिखे, उसको बोले आप भी जल्दी से उसको लेकर जाओ उनको दो। अब केवल पत्र नहीं दिए, क्या दिए, आपने स्वयं के कृपा के निदर्शन स्वरूप डोर कोपी निबसन और आसन वो भी दिए, किसी को नहीं दिए, अति सौभाग्य केवल उन्हीं के दिए, दर्शन भले ना दिए उनको, ये तो भेजे उनको पास, बोले उसको लेकर देना सनातन को देना कि मैं गोपाल के लिए सब दे रहा हूं उसको भेजना। अब जो दूत ने आकर जब पहुंचा महाप्रभु के प्रत्युत्तर, उनके प्रेम भरा वाणी, उनके कृपा आशीर्वाद आशीर्वचन, उसके साथ जो बसन जो कोपिन जो प्रसादी जो आसन, उसको पा करके उसको देख करके स्पर्श करके तो कृतकृत्य हो गए सारे वृंदावन के भक्त मंडली, आनंद में नृत्य करने लगे, अद्भुत कृपा महाप्रभु की, ऐसा तो किसी के ऊपर किए ही नहीं थे। तो उनको तो भट्ट गोस्वामी ने उस वस्त्र को दंडवत प्रणाम करे, आसन को प्रणाम करे, चंदन फूल देकर पूजा करने लगे, बोले प्रभु तो नहीं मिले तो उनके वस्त्र वही मेरे पूज्य है, वही मेरे उपास्य है। रूप सनातन ने उनको बहुत समझाए, बोले नहीं, महाप्रभु ने आसन दे करके ये आपको प्रतिष्ठित किया कि आप आचार्य होंगे, आप गुरु बनेंगे। वास्तविक बात यह है कि हमारे जो गौड़ीय आचार्य गण है ना, एक से एक दैन्य की मूर्ति हैं, इतने नम्र इतने नीच आपने आपको मानते थे, इतने दैन्यता था उनके पास, उनका तो कोई क्या बताएं, कोई आपने आपको गुरुपद में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कोई बोले हम कोई नहीं किसी कोई शिष्य नहीं बनाए, लोकनाथ गोस्वामी तो बोले मैं भी नहीं किसी को बनाऊंगा, उनको व्रत तोड़ना पड़ा एक ही व्यक्ति के लिए, नहीं तो फिर भी नहीं, लेकिन परंपरा चले कैसे, शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो परंपरा कैसे चलेगा। क्यों ऐसा करते थे मालूम है, क्योंकि वो आपने आपको इतने दिन मानते थे, स्वयं बहुत उच्च कुल रूप सनातन कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान के साथ नौकरी कर रहे थे, इसलिए आपने आपको इतने नीच मानते थे, इतने हीन मानते थे, बोलते हम किसी को उपदेश देने के लायक नहीं है तो इसलिए गुरु नहीं बनते थे। बोले कोई ब्राह्मण कुड़ी ने आ जाए तो उसको गुरु बनाएंगे, तो इसीलिए गोपाल भट्ट को ही महाप्रभु उनके मनोदशा जानते थे, इसलिए आसन भेज कर बोले यही आचार्य बनेगा, परंपरा उनके द्वारा चलना है, इसलिए भट्ट गोस्वामी का आचार्य बनाया गया, ये ब्राह्मण थे। यहां तक कि नहीं, रूप सनातन जी ने सनातन गोस्वामी स्वयं जो महाप्रभु को उनका आदेश था, भक्ति ग्रंथ प्रणयन सिद्धांत लिखन, उन्होंने नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों सारे चुन चुन करके जो सिद्धांत दर्पण भक्ति जो हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ को उन्होंने ही रचना तो किए थे, संकलन तो किए थे, लेकिन अपने नाम से नहीं छपाना चाहते, प्रकाश नहीं करना चाहते थे, बोले नहीं ये हम तो इतने नीचे मुसलमान के घर में काम किए थे, बड़े बड़े तभी जमाने में तो जाति पात बहुत प्रबल था, बोले बड़े बड़े गोसाई ब्राह्मण वो ये जो किताब है वो तो जमाने के लिए रहेगा, नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसको लोग बोलेंगे अरे ये उन लोग के नीचे, उनका बात कौन माने, तो इसलिए हमारे नाम से देने से कोई उसको ग्रहण करे ना करे, इसलिए कोई विशिष्ट कुलीन ब्राह्मण का नाम से इस ग्रंथ को दिया जाए, प्रकाशित किया जाए, ताकि ग्रहणीय बने लोग के सामने। तो इसलिए गोपाल भट्ट के नाम से भणिता किया गया उसको। वो द्राविड़ वंश के विशेष श्री संप्रदाय के ब्राह्मण परिवार के थे, तो उनको आचार्य बनाए, उनके नाम से ग्रंथ प्रणयन करवाए। ये धन्य मूर्ति था हमारे आचार्यगण के। दो ही आचार्य थे माने के रूप सनातन जी बोले, बोले एक तो काम नहीं चलेगा, गोपाल भट्ट रहे, जितने पश्चिमी आदि आदि जो भक्त आएंगे उनको दिखा देंगे, और दूसरा एक ब्राह्मण थे, जो दो भट्ट थे ना, रघुनाथ भट्ट, वो भी तपन मिश्र के पुत्र थे, मिश्र ब्राह्मण वो भी थे। बोले आप भी जो बंगाल से जो आएंगे वो आप उनको दिखा देंगे, उनके वही दोनों को ही चुना गया था। तभी जमाने दो ही आचार्य थे, लेकिन महाप्रभु के विशेष आदेश था गोपाल भट्ट के लिए कि एक मेरा अंशभूत भक्त आकर पहुंचेगा तो आपको उसको दिखा देना ही पड़ेगा, ये विशेष आदेश दिए थे। वो कौन थे? श्रीनिवास आचार्य स्वयं महाप्रभु दूसरे रूप में, उनके श्रीनिवास आचार्य के रूप में आए थे। वो गोपाल भट्ट जी के कृपा पात्र बने, जो षड़ गोस्वामी अष्टक में रचना किए हैं। तो समय हो रहा है, वो तो उनके ये वर्णन, वृंदावन के वर्णन तो शुरू ही नहीं किए। भट्ट जी ने वृंदावन पहुंचे तो जो वृंदावन में रहे ब्रजवास के रूप सनातन, तो उनको छोटे भाई की तरह अपने पास रखे, उनको सिखाए, मतलब रहे थे। लेकिन उनके मन में बहुत प्रबल लालसा था प्रभु के दर्शन के लिए। केवल चार महीना संग सुख दर्शन मिला था, कैसे छोड़े? अरे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन को जो एक बार देखे, उनके संग सुख प्राप्त करे, तो उसको छोड़ करके कोई जी सकता हो? तो कैसे चैन नहीं रहता था उनको, ब्रज में रहते हुए ब्रजेंद्र नंदन नहीं मिलते हैं और साक्षात स्वरूप में विराजते हैं जाकर के वहां, तो कैसे? तो उनके दर्शन के लिए उतारू वितगढ़ होते थे, बहुत प्रार्थना अर्थना करते थे। लेकिन महाप्रभु स्वप्न में बोले उनको, बोले गोपाल मैं अब ऐसे नहीं, मेरा दर्शन करना चाहते है तो जाओ, मैं शालग्राम के रूप में आपको दर्शन दूंगा, आप गंडुकी जाओ और मुझे प्राप्त वही होगा, मेरा आशीर्वाद वही करना स्वरूप से। तो ठाकुर के स्वप्न आदेश मिला, तो वृंदावन से हट करके तो गंडुकी जाने के लिए चल पड़े, वही बात, चल करके जाना पड़ेगा, भिकारी है, भिक्षा मांग कर खाते पीते चले। ऐसे वर्णन आता है, वहां से इसी रास्ता पर उत्तराखंड होकर जाते गए, सहारनपुर के पास में एक अभी भी गांव है देवबंद्य, इस गांव में एक व्यक्ति रहते थे, बड़े भक्त भाव के थे। उन्होंने उनको स्वागत संवर्धना किए, उनको पुत्र नहीं होता था तो उनके घर में रहे, तो उनका आशीर्वाद किए, बोले गोसाई जी अगर आपका आशीर्वाद से मेरा कोई लड़का होगा ना तो आपको नौछावर कर दूंगा, मैं आपके सेवा में दे दूंगा। वही हुआ, वो तो चले गए नेपाल, बड़े चलते चलते बड़े जंगल नदी पर्वत पार करते करते नेपाल पहुंचे, गंडकी के तीरे तीरे जा करके से सुगम जो उनका उद्गम स्थान है दामोदर कुंड, वहां स्नान किए। स्नान करके जब उठते, जब जल तर्पण करने जाते तो हाथ में अचानक शालग्राम छिड़ा आता है, बोले ईसा की मैं तो नहीं लिया था, तू छोड़ देते, लेकिन दोबारा लेते तो दोबारा आता, इसे बारम्बार आया। तो बोले यही ईश्वर की इच्छा, उसको स्वीकार किए। तो उसके साथ में एक नहीं और 11 शिला, द्वादश शिला लेकर के आए। ऐसे कहा जाता है कि भगवान जो पुरी में थे गंभीर लीला में, कभी कभी कूर्म रूप धारण करते थे, तो इस रूप में वो गंडुक में जाकर के शालग्राम शिला रूप में उनको दर्शन देते, वही रूप में उनको प्राप्त हुए थे, और उसी में ही वो अपने स्वरूप को दर्शन करते थे। जिसे उनको लेकर के आए वृंदावन में, द्वादश शालग्राम को लेकर आकर के उनकी उपासना करने लगे। निधि वन के पास रासस्थली में जमुना जी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके शालग्राम की उपासना करते थे। कोई विशेष व्यवस्था तो था ही नहीं, एक पिटारी था, उसके अंदर शालग्राम को रख करके जैसे तैसे जो मिलता था फल फूल पत्र पुष्प फल नैवेद्य उपासना करते थे। बड़े कुलीन ब्राह्मण परिवार थे, रंगनाथ जी के जो अर्चना है बड़े विधि विधान से होता है, उनके परिवार से, उनके काका पिता चाचा से सब सीखे हैं विधि विधान, बड़े ढंग से करते थे उपासना। लेकिन उपासना तो करते थे, मन में ही विचार होता था क्या वही रूप देखता हूं, मैं इतने दुर्भागा हूं कि यही स्वरूप वो देख नहीं पाऊंगा। महाप्रभु का तो अप्रकट हो ही चुका था। एक दिन वैशाख पूर्णिमा का कुछ दिन पहले एक धनाढ्य व्यक्ति ब्रज में आकर के जितने देवालय था सब मंदिर में जाकर के विशेष विशेष अलंकार और श्रृंगार सब भेंट देने लगे। तो उनके नाम भी प्रसिद्ध था, भट्ट गोस्वामी के कुटिया पर आए, पेड़ के नीचे बैठे थे गोसाई, बोले ठाकुर जी गोसाई जी मेरे कुछ भेंट कृपा करके स्वीकार करे, तो उनको देने लगे। वो बोले मैं भेंट लेकर क्या करूंगा, करूं क्या, मेरे कोई ठाकुर थोड़ी है, मेरे तो शिला, उनको क्या श्रृंगार करूं, कोई भेष पोशाक थोड़ी पहना सकूं, मुकुट थोड़ी पहना सकूं, तो क्या होगा ये अलंकार ये सब, ना नहीं 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 कृपा करके स्वीकार कीजिए। दे गए उन्होंने, लेकिन मन में बड़ा इच्छा था, है मेरा भाग्य में नहीं है, मैं तो सड़ग्राम। तो वैशाख पूर्णिमा से पहले दिन क्या तिथि पड़ता है मालूम है, कौन सा चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो दिन नरसिंह लीला वर्णन के, जो भगवान भक्तों का तो यही काम ही है, पूजा किए खाए ना खाए, कोई गोष्ठी आए बैठ करके भगवत चर्चा छेड़ दे, भगवत चर्चा करने लगे, नरसिंह प्रहलाद चरित वर्णना करने लगे। देर रात तक करते करते चरित्र वर्णना करके आए, लेकिन मन में ये भाव आया, देखो प्रभु ये राक्षस पुत्र प्रहलाद के लिए एक खुंटी से प्रकट हो गए, एक खम्बा से, मेरे लिए सालग्राम से नहीं हो सकता है, मैं कितने अधम हूं, प्रहलाद कितने उत्तम, उनका क्या भक्ति था, उनके लिए तो खंबे से निकल पड़े स्वरूप में, मेरे लिए वही पत्थर, क्या मुझे स्वरूप नहीं निकल सकते, मेरा भक्ति इतने कम है। ऐसे चिंतन करते करते रोते रोते रात बिताए, सुबह गए जमुना जी में स्नान किए, आकर के मंगला आरती करने के लिए जब पेटारी खोलते हैं, डर गए ये क्या है, कोई लाइट तो इलेक्ट्रिक लाइट तो था नहीं, बोले ये क्या है, सारा ग्राम फट चुका है, वो क्या है भाई ये। अब अनिंद्य सुंदर जुगल मूर्ति श्री राधा रमण देव की, राधा रमण की प्रकट, भक्तवांछा पूर्ण करने वाले हैं, कैसे रहेंगे, जब उनके लिए खंभे से प्रकट हूं तो आपके लिए सड़ग्राम से क्या नहीं। तो जैसे राधा रमण के दर्शन किए तो उनको देख करके वो तो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े, गदगद होकर के उठ कर देखते हैं, उनको राधा रमण थोड़ी दिखाई पड़े, उनको तो उनके उपास्य देव का दर्शन होता था। साक्षात आजान भुज लंबित वही कनक जुगल मूर्ति, गौरांग महाप्रभु के दर्शन उसी में होता था, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जुगल मूर्ति है ना, वही तो राधा रमण है, अकेले है, राधा और कृष्ण दोनों वही है, इसीलिए राधा रमण जी में राधा रानी नहीं है, क्योंकि अकेले वही महाप्रभु है, वही जुगल है राधा रमण। सुबह होते ही चारों तरफ मैसेज फैल गया वाक्य, रूप सनातन और बाकी जितने गोस्वामी भक्त सब दौड़ कर आए, आके देखे, अचंबा कथा, आश्चर्य बात है। रूप गोसाई का गोविंद जी थे, सनातन जी के मदन मोहन थे, मधु पंडित जी के गोपीनाथ थे, उनका मन में बड़ा इच्छा होता था, मेरा इसे विग्रह होता, मैं इसे श्रृंगार करता, और रूप गोसाई जैसा गोविंद जी का जैसे मुख कमल होता, गोपीनाथ जैसा वक्षस्थल होता, मदन मोहन जैसा चरण कमल होता, मैं कैसे अलंकार पहनाता, कैसे सेवा करता, ये मन में विचार होता था। ठीक भक्त भाव को भावग्राही जनार्दन ठीक इसी रूप से सालग्राम से निकाल कर फटकर प्रकट हो गए, जिसका मुखारविंद तो साक्षात गोविंद जी जैसा था, वक्षस्थल साक्षात गोपीनाथ, चरण जुगल साक्षात मदन मोहन, तीन ठाकुर के गोड़े के जो आराध्य प्रयोजन तीनों एक में ही है, अभी भी आप दर्शन करेंगे तीनों संबंध हृदय प्रयोजन उन्हीं में ही है। तो बड़े लगन से बड़े श्रद्धा से उपासना में लग गए, अब बड़े बड़े रूप सनातन आदि गोस्वामी आकर के सभा करके उनके नामकरण किए, बेटा हुआ ना तो उनका संस्कार हुआ राधा रमण जी का, फिर उनका नामकरण हुआ, राधा रमण नाम रखा गया। हाँ, नामकरण करके रखे, तो बड़े लगन से बड़े प्रेम से पूजा करने लगे, अलंकार श्रृंगार जो उनका इच्छा था मन भर के करने लगे। अब करते 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 वृद्ध होने जा रहा है, तब वो जो बात जिसको उन्होंने जाते समय कृपा करके गए थे देवबंद्य ग्राम में, जिस परिवार को उनका तो पुत्र नहीं था लेकिन पुत्र हुआ, दो दो लड़के हुए उनके। पहले लड़का हुआ उनका नाम था गोपीनाथ, तो उनको तो कहने के जैसे युवक का अवस्था हुआ, उनके पिता माता ने बोले थे भाई हमको जन्म होने से पहले से ही आपके साधु को हम दान कर चुके, तुम उनके पास जाओ। वो आर्डर ढूंढ ढांड करके आ ही गया, वृद्धावस्था में उनको सेवक का जरूरत था। गोपीनाथ के पहुंच गए, प्रभु मैं नहीं पहचान, तुम कौन है? नहीं नहीं नहीं, मेरे माता पिता बोले मैं तो आपका ही हूँ, मुझे मुझे आपकी रखी है, आपके लिए वो दे दिए। तो गोपीनाथ को स्वीकार किए अपने सेवक के रूप में। तो वही उनके वृद्ध समय में राधा रमण की सेवा पूजा में सहायता करते थे। तो उन्होंने जो सिद्धांत दर्पण जो पूजा विधि का जो आदि वर्णन, कई सारे कार्य का रचना किए हैं, कई ग्रंथ रचना किए हैं बड़े अनुबद्ध। तो गोपीनाथ जी को, गोपीनाथ पुजारी को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके सेवक के रूप में रखे थे, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी ठहरे, वो शादी नहीं किए, तो परंपरा कैसे चलेगा? तो फिर उनके बड़े भाई, उनके भाई थे, छोटे भाई थे दामोदर पंडित, वो भी देवबंदी से आए, तो वो विवाह किए। तो जिनसे परिवार की जो अभी जो अनुजाई आ रहे हैं, जब राधारमण परिवार जो देखते हैं इतने गोसाई 50-60 परिवार भर चुके हैं, वो सारे दामोदर पंडित के परिवार हैं, जो गोपीनाथ जी के भाई थे उनके परिवार से आ रहे। जो साक्षात कृपा पात्र गोपीनाथ जी वो तो नियंगी रहे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे ही राधा रमन की सेवा करते करते, और आज के तिथि में, आज के दिन इस ब्रज वृंदावन में जमुना तीर में निधिवन के पास में रास मंडली में राधा रमन के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। हरे कृष्ण। ऐसे उनके लीला के वर्णन करे तो और बहुत समय, बहुत कुछ बोलने का है लेकिन समय नहीं। और एक बात मैं भूल गया, लेकिन अभी बोले एक और विशेष बात, एक ग्रंथ प्रेम मिल, ऐसे गोपाल भट्ट के वर्णन चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में तो वैसे नहीं मिल रहा है, केवल कविराज गोस्वामी ने इतने लिखे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए गुरु मोर शिक्षा गुरु करी माने, कोटि पाद पद्म उनके प्रणाम किए हैं कि उनको शिक्षा गुरु करके माने हैं। और दूसरे जगह में एक संकेत दिए कि चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम वृक्ष है, उनके वृक्ष के एक प्रधान शाखा है गोपाल भट्ट, ये वर्णन चरितामृत में है। ऐसे कहावत है कि जब कविराज गोस्वामी ने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए सारे बड़े बड़े गोस्वामी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, तो गोपाल भट्ट जी के पास भी गए थे। गोपाल भट्ट बड़े प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिए, बोले कृष्णदास एक बात करना, लिखो लिखो, बहुत अच्छा बात है मेरे प्रभु के बात लिखो, लेकिन एक बात है, मेरा नाम नहीं लिखने का उसमें, मेरा बात कुछ नहीं लिखने का। तो क्या करे, वो बंदे नहीं लिखे है? वो सिनेमा आचार्य क्यों मना कर देते, तो बड़े मुश्किल से सीजीव गोपाल को केवल षड गोस्वामी अष्टाक में ऐसे कैसे नाम लिख दिए, नहीं तो किसी को भी, बड़े बड़े दैन्य मूर्ति होते हैं वो लोग सब, कहीं हमारा नाम नहीं लिखने का मना कर। तो इसलिए कहीं उनका सरित ऐसे वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भक्ति रत्नाकर, अनुराग वल्ली और प्रेम विलास, उस ग्रंथ में उनका वर्णन थोड़ा बहुत मिल रहा है। प्रेम विलास में एक अद्भुत चरित्र का वर्णन मिलता है। एक बार जब वृंदावन में लगभग 85 साल आयु में उनके शरीर, उन्होंने नित्य लीला प्राप्त किए, लगभग 55 साल ब्रज में रहे उन्होंने, यमुना किनारे रस विलास किए, ब्रजवास किए। तो एक बार, हाँ, अनेक शिष्य उनके थे, तो एक बार उनके एक ब्रजवासी शिष्य बने जिनका नाम था हरिवंश, जिन्होंने राधा वल्लभ के अनुजाई थे, उनके पुजारी थे, भट्ट जी से दीक्षा लिए थे, उनके शिष्य थे। लेकिन यहाँ ब्रज में ऐसे ही परिपाटी है राधा वल्लभ जी के, राधा रानी के प्रसाद सब खाते हैं, वो पान खूब खाते हैं, चुबाते हैं, पान चुबाते हुए जाते थे। तो हमारा तो भाई चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, वहीं से तो आया है सब नीति नियम, वो तो बड़े कट्टर नियम वाले थे दक्षिणात्य, और बड़े कट्टर नियम वाले। तो भट्ट गोस्वामी बोले, बोले, बोले हरिवंश पान मत खाया करो ना गुरुजी, ये श्री जी के प्रसाद है, वो तो दिव्य है श्री जी का प्रसाद, बोले 100 प्रसाद हुआ नहीं खाना चाहिए, नहीं प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए प्रसाद खाऊंगा। बड़े जिक्र किया तो बड़े बोले ठीक है कम से कम एकादशी के दिन नहीं खाने का। लेकिन स्वभाव अनव्य मुच्यते, तो एकादशी के दिन भी बोले श्री जी के प्रसाद गुरु जी क्या करेंगे, हो तो अपना पान खाए। वो ही बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, बड़े भाव था उनका, लेकिन अंत में उनको तीव्र वैराग्य हुआ तो उन्होंने जंगल में चले गए। हे हरिवंश जी जंगल में चले गए तो ऐसा एक घटना हुआ तो उनको 10वीं लोक ने पकड़ करके किसी कारण से उनको मार दिए, मार करके सर काट दिए, काट करके देखे कुछ है नहीं उसके पास जंगल है तो उसे जमुना जी में फेंक दिए, मार करके सर से धड़ अलग करके जमुना जी में फेंक दिए। किसी को पता नहीं जंगल में डाकू लोग, तभी जमाने में तो कोई लोग रहते नहीं थे, वृंदावन ऐसी जंगल था, अक्का बक्का कोई रहते होंगे तो मार दे फेंक दिए जमुना जी में, फेंक दिए। तब किसी को पता नहीं, बहुत दिन के बाद भट्ट गोस्वामी जो बहुत वृद्ध हो चुके थे, एक बार उन्होंने जमुना जी में स्नान करने गए थे तो स्नान करके किसी घाट जब उठे तो उनका पैर में कुछ लगा, बोले क्या लगा है, बार बार लगता है उसको हटा देते, फिर लगता है फिर हटा देते, तो डूब करके हटाए, बोले क्या है, हटाए तो क्या था, हरिवंश जी के सर था, उनके जो मस्तक था वही था, अभी सजीव था, जमुनाज में गड़ रहा था वही अपने चरण में लग रहा था, बार बार जिसने ठोकर हटाते क्यों मेरे पैर में हटा, तो नहीं हट रहा था, और देखे कि वो जीवित थे, उनका सर पड़ा है। अपने शिष्य को तो पहचान लिए, बोले अरे तुम ऐसे कैसे किए दशा, ना गुरु जी क्या बताऊं, सारे आसुड़ मुड़ सारे स्टोरी बताए उनको, ऐसे ऐसे हुआ मैं ऐसे चल गया था, ऐसे में ऐसे चोर डाकू पकड़ के मार दिए, काट के फेंक दिए, लेकिन शरीर तो सड़ गया लेकिन अभी तक मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, मैं श्री जी का इतने बड़ा उपासक रहा, आजन्म श्री जी की उपासना किया, और श्री जी बोलती है नहीं तू गुरु अपराधी है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, मेरा ये दशा गड़बड़े कृपा कीजिए, तो इसलिए मैं जमुनाज में पढ़ता हूँ, आप स्नान करने आते हैं तो कभी ना कभी मेरे पास में मौका लगेगा, इसलिए मैं जमुनाज में अभी तक पढ़ रहा हूँ सड़ करके, तो आपके चरण में लग रहा हूँ, मुझे कृपा कीजिए, मेरा उद्धार हो ही नहीं रहा है, आजन्म वृंदावन में श्री जी का उपासना करते हुए भी कि अपराधी को अपराधी किया, तो इसलिए मुझे उद्धार नहीं किया, आपके आदेश को अवमानना किया था मैंने। भक्त तो ऐसे ही कृपामय होते हैं, तो उनको ही कृपा के आशीर्वाद दीजिए, ठीक 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 माफ करते चले, तब उनका उद्धार हुआ। ये प्रेम विलास में ऐसे वर्णना था, ऐसे अद्भुत चरित्र वर्णन। हरे कृष्ण। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, समेत गौर भक्त वृंद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर हरि प्रेमानंदी। गोपाल भट्ट जी का समाधि है ना, अब फिर बाद में बहुत लेट हो गया, फिर का मौका लगे तो करें।